muy urgente.
Muy urgente.
Object only 25th December, 85. Dusra group. Kumar hai hi urti kala wale. Jo sada nirbandhan hai, woh urti kala wale. To nirbandhan Kumar ho. Man ka bhi bandhan nahi. To sada bandhanon ko samapt kar. Nirbandhan ban. Urti kala wale Kumar ho. Kumar apni sharir ki shakti aur buddhi ki shakti दोनों को सफल कर रहे हो। लौकिक जीवन में अपने शरीर की शक्ति को और बुद्धि की शक्ति विनाशकारी कार्य में लगाते रहे और अब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, हलचल मचाने वाले नहीं लेकिन शांति स्थापन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ कुमार हो। कभी लौकिक जीवन के संस्कार इमर्च तो नहीं होते हैं। अलौकिक जीवन वाले, नए जीवन वाले, तो नए जन्म में पुरानी बातें नहीं रहती। आप सभी नए जन्म वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी अपने को साधारण न समझ, शक्तिशाली समझो। संकल्प में भी हलचल में ना आना। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं करते हो कि व्यर्थ संकल्प आते हैं क्या करें। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं करते हो कि व्यर्थ संकल्प आते हैं क्या करें। भाग्यवान कुमार हो, 21 जन्म भाग्य का खाते रहेंगे। स्थूल सूक्ष्म दोनों कमाई से छूट जाएंगे। 25th December 85 की मुरली है। दूसरा ग्रुप, कुमार है ही शक्तिशाली निर्बंधन उर्ति कला वाले। जो सदा निर्बंधन है वह उर्ति कला वाले, तो निर्बंधन कुमार हो। मन का भी बंधन नहीं तो सदा बंधनों को समाप्त कर। निर्बंधन बन उर्ति कला वाले कुमार हो। कुमार अपनी शरीर की शक्ति और बुद्धि की शक्ति दोनों को सफल कर रहे हैं। लौकिक जीवन में अपने शरीर की शक्ति को और बुद्धि की शक्ति क्या करते थे, विनाशकारी कार्यों में लगा देते। और अब क्या करते हो, स्थापना के कार्य में लगाते हो। अब श्रेष्ठ कार्यों में लगाने वाले, हलचल मचाने वाले नहीं लेकिन शांति स्थापन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ कुमार हो। कभी लौकिक जीवन के संस्कार इमर्च तो नहीं होते हैं। अलौकिक जीवन वाले, नए जन्म वाले, तो नए जन्म में पुरानी बातें नहीं रहती। आप सभी नए जन्म वाली कौन हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी अपने को साधारण न समझ, क्या समझना है, श्रेष्ठ शक्तिशाली समझना है। संकल्प में भी हलचल न हो। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं करते हो कि व्यर्थ संकल्प आते हैं क्या करें। भाग्यवान कुमार हो, 21 जन्म भाग्य का खाते रहेंगे। स्थूल और सूक्ष्म दोनों कमाई से छूट जाएंगे। छोटा सा पैराग्राफ है पर कितनी सारी टॉपिक्स है इसमें। पहले तो कहा कि तुम सब कौन हो, उड़ती कला वाले हो। क्यों उड़ती कला वाले हो, क्योंकि निर्बंधन है, कोई भी बंधन नहीं है। इसलिए जो संसार में कुमार है वो क्या करते हैं, अपनी शरीर की शक्ति और बुद्धि की शक्ति को किसमें लगाते हैं, विनाशकारी कार्य में लगाते हैं। और तुम किसमें लगाते हो, श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो। वो हलचल, और तुम हलचल मचाने वाले नहीं लेकिन क्या करने वाले हो, शांति को स्थापन करने वाले हो। ऐसे श्रेष्ठ कुमार हो। कभी लौकिक जीवन के संस्कार इमर्ज तो नहीं होते हैं। अलौकिक जीवन वाले हो, अर्थात नए जन्म वाले, तो नए जन्म में पुरानी बातें नहीं रहती। आप सभी नए जन्म वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कोई भी अपने को साधारण न समझ, क्या समझे, शक्तिशाली समझो। संकल्प में भी जो जन्म है हमारा वो कैसा है, अलौकिक जन्म है और नया जन्म है। तो नए जन्म में पुरानी कोई भी बातें न हो, उसके लिए क्या किया जाए। संडे की मुरली थी ना, मर्जीवा जन, नया जन, ब्राह्मण जन, पुराने हिसाब किताब समाप्त। तो चिंतन का विषय है कि इस जीवन में पुरानी कोई भी बातें न रहे, उसके लिए क्या किया जाए, या पुराना जो कुछ हुआ है उसको कैसे भुला दिया जाए। क्या किया जाए कि जिससे जो भी पुरानी बातें हुई है जीवन में वो भूल जाए। कैसे भूलेंगे, ये याद करो तो वो भूलेंगे, ये याद करते करते बीच बीच में वो याद आती है। अशरीरीपन का अभ्यास पॉइंट्स इसकी निकालनी है कि नया जीवन है, नया सब कुछ है, तो पुराना इसमें आना नहीं चाहिए। एक जो अभ्यास है, सबसे सूक्ष्म अभ्यास जो है वो, जो कि संसार में कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता है, पास्ट को भूलने के लिए, और वास्तव में वही सबसे कारगर उपाय है, वो है अशरीरीपन। जैसे ही आत्मा देह से डिटैच होती है और अपने स्वरूप में स्थित होती है तो क्या होता है, स्वतः ही ऊपर से शक्ति आती है और पुराना डिलीट होना चालू होता है। वो एकमात्र ऐसी विधि है कि जिससे जो पास्ट के संस्कार, पास्ट के विकर्म, पास्ट की बातें, वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो सकती है। इसके लिए पुराना भूलने की विधि है संपूर्ण अशरीरीपन, या फिर अशरीरीपन का जो अभ्यास है उसे बढ़ाना है, उसकी अवधि जो है, ड्यूरेशन, टाइम बढ़ाना है। जितना जितना बाकी चिंतन बहुत कर सकते हैं, वो एक दूसरी विधि है, परंतु सबसे शक्तिशाली विधि जो है पास्ट को भुलाने की, वो है अशरीरीपन। आत्मा इस देह से डिटैच हो जाए और परम धाम में स्थित हो जाए, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। एक एक किरण को अपने अंदर ग्रहण करना है, तो आत्मा उस अशरीरी स्थिति में पुराना स्वतः ही जो उसमें इंप्रेशन बने हुए हैं वो एक 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 डिलीट होते जाते हैं। और दूसरा कोई सबसे शक्तिशाली मार्ग नहीं है। तो सबसे पहली विधि कौन सी है, अशरीरीपन। किसके लिए, पास्ट को समाप्त करने के लिए और साइलेंस पावर, योग का पावर, सब कुछ इसमें आ जाएगा। स्व स्वरूप, कल के वरदान में थे ना, चार शब्द थे, स्व स्वरूप, स्व स्थिति, स्व नशा, स्व का नशा, स्वयं की स्थिति, स्वयं का स्वरूप और स्वयं की स्मृति। स्वस्वरूप की स्मृति, सब स्व 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 स्व, वो चारों बातें थी। चारों बातों से फिर वो सारी दूसरी बातें होती हो जाती है, वो दूसरा प्रश्न है। तो स्व में स्थित हो जाना, यह विधि है पास्ट को भूलने की, और शक्तिशाली विधि बताओ। जैसे ये शक्तिशाली विधि है जो कि सबसे कम की जाती है, बाकी सारा की करते हैं लोग पास्ट को भूलने के लिए, ये सबसे कम करते हैं।
शरीर को जलाना,
शरीर को वो
केरोसिन डाल दी
वो तो है ही ना,
मिट्टी में अशुद्ध संकल्प, अशुद्ध स्वरूप, आत्मा सारे दिनचर्या में ये प्रैक्टिस करने का।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अपने स्वरूप में स्थित रहना,
सारा दिन में प्रैक्टिस करने का,
तो श्रेष्ठ संकल्प कहा जा सकता है। हाँ, श्रेष्ठ संकल्प। पुराने तो बहुत सारे संकल्प, अभी नए संकल्पों की रचना करना, शुद्ध संकल्पों की रचना करना, नए संकल्पों का स्टॉक अपने पास जमा होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि सारा हो गया है। जिसको जो चिंतन कर लिया था, अब हम चिंतन क्या करें? सारा तो कर लिया जिसको करना था, इतनी सारी क्लासेस अवेलेबल है, हम क्या करें अब और एडिशन? ऐसा नहीं है, बहुत सारा चिंतन अभी भी बाकी है। एक एक मुरली का एक एक लाइन समान है, चिंतन का विषय है। तो श्रेष्ठ संकल्पों में स्वयं को स्थित करना, समान में स्वयं को स्थित करना सारे दिन भर, एक तो हो गया आशरी सुबह और फिर बीच बीच में ये सारे दिन भर इतने ऊंचे संकल्प हो, क्योंकि अभी संडे वाली मुरली में कहा है ना, श्रेष्ठ तकदीर का आधार है श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। तो श्रेष्ठ स्मृति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प चाहिए, तभी श्रेष्ठ स्मृति हो सकती है। तो अपने पास स्टॉक जमा करो, किसका? शुद्ध संकल्पों का स्टॉक। एक एक मुरली से अब बाकी चीजें देखना छोड़ दो, उसमें से मेन पावरफुल संकल्प कौन कौन से है वो मुरली से निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना वहां से, उसको अलग से लिखना और उसको बार बार पढ़ना। फिर बजाय इसके कि एक ही मुरली को चार बार पढ़े और पांच बार पढ़े, उसमें से मेन मेन पॉइंट्स निकाल के अब मुरली को बाजू में रख के उन पॉइंट्स को पढ़ना बार बार। पर वो पॉइंट सारे शक्तिशाली होने चाहिए, जिसमें समान होने चाहिए, नशा चढ़ जाए आत्मा को, ऐसे वो पॉइंट्स होने चाहिए। तो सेकंड विधि है श्रेष्ठ संकल्प। तीसरा आगे क्या बनना है उसको सामने रखना, पीछे वाला फिर भूलते जाएगा। केवल सामने रखना या बार बार याद करते रहना, और बार बार याद करते रहना। बाबा ने एक विधि जो बताई है, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ, या जब भी लक्ष्मी नारायण को देखो तो याद करो कि ये बनना है, ऐसे दिव्य गुण, ऐसी सूरत, ऐसा सब कुछ मुझ में आया है। तीसरा, चौथा ड्रामा के नॉलेज से क्या बीत गया सो बीत गया, बीत गई सो बात गई, बात गई सो बीत गए सो बात गई। तो ये ड्रामा कल पूछा था ना, ड्रामा और पुरुषार्थ कौन बड़ा है? तो पुरुषार्थ पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। तो ड्रामा की नॉलेज को या ड्रामा की जो पॉइंट्स है कि जो हो गया अब वापस वो रिपीट सीधा 5000 साल के बाद होगा, अभी तुरंत रिपीट होने वाला नहीं है, इसके लिए निश्चिंत, अब भी रिपीट होने वाला नहीं है। पॉइंट सबको पता है ड्रामा, परंतु फिर भी उसका गहराई से चिंतन करना, तो ये एक विधि है। और पास्ट, हाउ टू फॉरगेट द पास्ट, पास्ट को कैसे भूला जाए? सुदर्शन चक्रधारी बनने से, बिजी रहने से, चिंतन में बिजी रहने से, कोई भी एक पॉइंट स्वयं को देना और उसका विस्तार करना, यह सबसे बेस्ट विधि है अपने मन को। नहीं तो मन पीछे चला जाता है, या तो भविष्य में जाता है या तो पास्ट में जाता है। अगर उसे कुछ भी दिया नहीं जाए लक्ष्य, एक घंटे के लिए, अभी जैसे अभी का टाइम है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, हमने उसे कुछ खास लक्ष्य नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो स्वतः ही स्थूल कर्म करते हुए भी पास्ट में चले जाएगा या भविष्य में चला जाएगा। उसके पास चिंतन के लिए एक लक्ष्य हो, जैसे ये चर्चा यहाँ चल रही है, पास्ट को कैसे भूला जाए, क्लास पूरी होने के बाद हमारे मन में वही चर्चा आगे चले, ऐसे नहीं कि क्लास पूरा हो गया और चर्चा वहीं रुक गई। और क्या क्या हो सकता है, ये सोचो ही नहीं कि पॉइंट्स पूरे हो गए, पॉइंट्स पूरे हुए ही नहीं है, चाहे कोई 100 भी पॉइंट्स बता दे और कहे कि ये फाइनल है, ऐसा नहीं है। वो 100 होने के बाद भी और दूसरे 100 अभी भी खाली पड़े, अभी भी हमको, हमने किसी ने आज तक सोचा ही नहीं उनके बारे में। इसके लिए सोचो कि सब नया है, इसके लिए कोई भी बातें यहाँ पर पुरानी नहीं है। किसी ने क्लास करा दी है पवित्रता की, हो गया पवित्रता का चिंतन, ऐसा नहीं है, वो इतना बड़ा विषय है और हर विषय बड़ा है यहाँ पर। और तो चिंतन, चिंतन में स्वयं के मन को बिजी रखना। एक दूसरी विधि है मुरली पढ़ने की, हाँ उसमें आते हैं। एक दूसरी विधि है मुरली पढ़ने की, वो है पॉइंट्स निकालना। कैसे पॉइंट्स? प्रश्न, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल की मुरली में था, स्वर्ग क्या है केवल तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते। ये मुरली में पॉइंट आया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते रहते हैं, पूरा चार पेज की मुरली है उसमें इतनी सारी पॉइंट्स आते रहती है। अब हम लिखे उसको, वहां से हटा दी, अपनी डायरी में लिखे केवल एक ही शब्द स्वर्ग। सोचो इस स्वर्ग पे हमें निबंध लिखने को अगर दिया जाए, या कोई मीडिया पर्सन आ जाए, संचार विभाग माध्यम वाले, तो आ जाए और पूछे कि आपकी स्वर्ग की क्या अवधारणा है, आप स्वर्ग किसे समझते हो, अब हमारे पास क्या उत्तर है इसके, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे टॉपिक में। जैसे स्वर्ग है तो स्वर्ग पहले क्या है, अब दुनिया वाले स्वर्ग किसे कहते हैं, संसार में शास्त्रों में क्या क्या मान्यता है स्वर्ग के बारे में, किस किस धर्म में स्वर्ग की चर्चा है। अच्छा, ये बाहर की चर्चा। अब हमारे यहां पर स्वर्ग के बारे में बाबा क्या क्या कह रहे हैं, कब आएगा, कौन कौन उसमें रहने वाले हैं, अच्छा जो वहां रहने वाले हैं वो वहां पहुंचे कैसे, आए कहां से, स्वर्ग कब था, कितनी लोक संख्या थी, सोचना हम चालू कर दिए। हमने एक पॉइंट वहां से निकाल दिया, बजाय इसके कि बस वही 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 लाइन 10 बार पढ़े, अब उसको बाजू में रखकर केवल एक शब्द लिखा है स्वर्ग। अब स्वर्ग को टॉपिक्स में डिवाइड किया पहले तो, और टॉपिक्स में डिवाइड करने के बाद अब उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन वो लोग होंगे, कौन सा धर्म होगा, वेशभूषा कैसी होगी, पर्यावरण कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा, पशु पक्षी कैसे होंगे, सब कुछ स्वयंवर कैसे होगा, स्वयंवर कैसे होगा, क्या होगा, राज दरबार कैसा होगा, कैसे हमने उसको टॉपिक्स में डिवाइड किया है। एक है लिखना, पर हम लिखने की भी बात नहीं कर रहे हैं, सोचने की ही बात कर रहे हैं, मन ही मन सोचने की बात कर रहे हैं। लिखना वो दूसरा विषय है, लिखना अपने आप में कला है, वो तो लिखने के बाद कई 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 लोग लिखने में ही अटैच हो जाते हैं, जो खुद का लिखा हुआ है उसी में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो एक दूसरे प्रकार की सूक्ष्म माया है कि हमने जो लिखा है ना वो बहुत अच्छा लिखा है, और वो लिखे हुए में ही फंसती है आत्मा। इसके लिए हम लिखने की यहाँ आज बात नहीं कर रहे, सोचने की बात कर रहे, केवल टॉपिक आया है, टॉपिक को केवल टॉपिक्स लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं। टॉपिक लिख दिया स्वर्ग और कुछ नहीं। कल की मुरली से लेंगे। दूसरा एक विषय था तुम्हें निर्भय बनना है, तुम्हें कोई से डरना नहीं है, निर्भय। अभी मुरली बाजू में रख दो, अभी केवल पहले सुबह क्या कर लिया हमने, मुरली पूरी हुई, टॉपिक्स लिख के रख दिए है। अभी दिन भर में एक एक टॉपिक को याद करो, अभी टॉपिक है निर्भय। अच्छा, सबसे पहले निर्भय पर चिंतन करने के लिए भय के टाइप्स कितने हैं, किस किस से भय है संसार में, एक। फिर उस भय से मुक्त होने के लिए बाबा ने क्या क्या विधि बताई है, हमें कौन कौन से, कोई महावाक्य याद है भय से संबंधित, आज तक जो जो बाबा ने बोला है। अच्छा, भय से संबंधित किस किस ने हमें बताया कि भय को कैसे जीता इस यज्ञ में, किस किस को कौन कौन से भय थे और कैसे उन्होंने जीता, तो ये भय का चिंतन, निर्भय, केवल निर्भय। फिर वो जो है ना निर्भय गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें उसकी चर्चा आई है, वहां क्यों चर्चा आई है, वो भगवान के लिए कहा है निर्भय। तो इस तरह से उस विषय का विस्तार करना, कहां पे विस्तार करना, लिखने से नहीं, केवल मन में, क्यों, क्योंकि मन को बिजी रखना है, नहीं तो वो सीधा जाता है पीछे, किसने मुझे क्या क्या कहा था, मेरे साथ क्या क्या हुआ था,
उससे डरने वाला नहीं है।
तो जैसे एक जो कल कहा निर्भय, तो हम निर्भय पर चर्चा मन ही मन सोचना चालू करें और उसका विस्तार करें। तो हर मुरली से कम 5 ऐसे विषय निकाल लेना है, 5। जैसे आज के स्लोगन में कहीं क्रोध के बारे में है, तो क्रोध का कारण क्या है, तो केवल क्रोध मुक्त कैसे बने, ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक का फिर मन ही मन विस्तार करना चालू करना। तो हर दिन में, सारे दिन भर में इस तरह से विस्तार करना है टॉपिक्स का। तो वो एक विधि कौन सी है, चिंतन की। और तो नई बातें, अगले संडे की मुरली है, 3rd पार्टी, नया युग है, नया क्या क्या है, हमने इसके ऊपर चर्चा की है इधर एक दो बार, इस जीवन में नया क्या क्या है। तो नए में दो तीन बातें महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है नए की, नए में नए संकल्प, नया चिंतन, नए संस्कार स्वतः ही बनेंगे अगर ये चिंतन और नई आदतें, संस्कार से ज्यादा अच्छा शब्द है आदत, कौन सी चीजें हमको करनी है, तीन चीजें अगर ले, वैसे तो नए क्या क्या होना चाहिए उसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है, ये भी नया वो भी नया, नया अमृत वेला, नई मुरली, नया चिन्ह, तो उसमें नया संकल्प, नया चिंतन और न्यू हैबिट्स, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स, ऐसी कौन कौन सी आदतें हम बनाए जिससे हमको फायदा हो, पहले तो उसको लिस्ट बनाना चाहिए या सोचना चाहिए उसके बारे में, या हमको कौन सी आदत किसी और में दिख रही है, इसमें यह आदत बहुत अच्छी है पर हमारा क्या है, अब तक केवल एप्रिसिएशन का पार्ट है, स्तुति करना उसकी, हमने अभी तक ये सोचा नहीं है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, उसकी वो आदत बहुत ही अच्छी है पर वो वहीं तक है उसकी और मैं दूसरा, इधर मैं अभी तक सोचा नहीं हूं कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, केवल उसकी स्तुति करने तक ही वो सीमित है। तो नया संकल्प, नया चिंतन और नई आदतें, तो नया सब कुछ नया हो जीवन में, कौन कौन सी हम नई आदतें डालें, एक तो एक नजर दौड़ाओ आसपास के लोगों की तरफ कि इनमें ऐसी कौन सी आदत है अच्छी जो हमें नहीं है, छोटी सी हो सकती है वो, एकदम छोटी सी, जैसे वहां हॉस्पिटल में कई लोग ना वहां बाबा के कमरे से जाते हैं तो जब भी जाएंगे एक मिनट रुकेंगे और बाबा को देखेंगे फिर जाएंगे, ये अच्छी आदत है बहुत, कुछ तो वो बात तो करते हैं क्या करते पता नहीं, पर जब भी जाएंगे वो वहां से तो एक मिनट तो रुकेंगे और वो जो कांच है उसमें से देखेंगे अंदर, तो शायद दृष्टि लेते होंगे या कुछ बात करते होंगे, कुछ ना कुछ हर एक के पास एक आदत ऐसी है जो हमें नहीं है, हम उसको ले ले, खींच ले अपने अंदर, उसके लिए पहले तो संकल्प करना पड़ेगा कि ये आदत उसमें है तो मैं अपने अंदर कैसे लाऊं, क्योंकि हर एक में बहुत सारी विशेषताएं हैं, विशेषता देखना, विशेषता सुनना और वर्णन करना, ये तीन चीजें हैं, दादी से कहा है बाबा ने, विशेषता सुनना, देखना और वर्णन करना, ये तीन चीजें करते रहो निरंतर, तो साज बजेंगे यहाँ पर, बाजे बजेंगे यहाँ पर जैसे उधर बजते हैं वो इस परिवार में खुशी के। और विधि,
एक बाबा से बात है, प्रेमी खोता शिक माशुक होता है
ना, तो प्रेम बढ़ाना
करना, बाबा सदा सामने, बाबा सदा साथ,
सामने
हम बैठे हैं,
तो भगवान से प्रेम बढ़ाना, उसकी फिर वो सारी विधियां है, उससे बात करना, उसके पास सामने बैठना, उसको बार बार इमर्ज करना, तो बाबा से प्रेम बढ़ाना, कैसे बढ़ाएंगे प्रेम,
ये सब जो बताए करने से प्रेम बढ़ेगा,
ये दो ही बातें बताइए पूरी बातें, और क्या क्या करेंगे जिससे प्रेम बढ़ जाए, भगवान से प्रेम कैसे बढ़े उसका, हाँ उसे सर्व संबंध जोड़ने से, कौन सा संबंध अब तक जोड़ा नहीं है,
अब तक मित्र संबंध ने दुख दिया वो भी याद करना,
मित्र संबंधियों ने
दुख ही मिला,
हाँ ये एक दूसरी विधि है, ईश्वर अनुराग विषय विराग, तो इस संसार के लोग जो है उनसे अब तक हमें क्या क्या मिला है, उत्तर आएगा हर एक यदि सोचे कि मुझे ये जो भी मैंने संबंध बनाए थे आज तक, बहुत प्यार से बहुत संघर्ष करके संबंध को बढ़ाया था, कितने त्याग किए थे और उस व्यक्ति से मुझे मिला क्या, उत्तर होगा कुछ भी नहीं मिला, मनुष्य कैसे कोई सुख दे सकता है, उसके पास है ही नहीं, यहां से क्या क्या दुख मिले हैं उसका भी थोड़ा चिंतन करो तो इससे वैराग आएगा और ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा, ये एक विधि है प्रेम बढ़ाने की, बाप से बात करने की, दूसरा बार बार उसको सामने रखने का, तीसरा उससे फायदे क्या क्या है भगवान से, क्योंकि देखो वो अवस्था जिस समय हम परमात्मा प्रेम में मगन रहते थे वो अवस्था कैसी थी, और जिस समय हम किसी व्यक्ति के प्रेम में, व्यक्ति के लगाव में, लगाव से हमें क्या क्या नुकसान हुए उसका चिंतन करो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से जो लगाव था, मोह था, आसक्ति थी, उससे ही जीवन में बड़े से बड़े विघ्न आए हैं। हमारे जीवन में जो सबसे बड़े विघ्न आए हैं वो किसी व्यक्ति के लगाव से, आसक्ति से आए हैं। यदि सोचो वो आसक्ति नहीं होती तो शायद हम आज जहां हैं उससे कई गुना आगे होते। तो वो लगाव से क्या क्या नुकसान हुए हैं, आसक्ति से क्या क्या नुकसान हुए हैं, और अब भगवान से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसका चिंतन करना, इसी चिंतन में मन को बिजी रखना।
जैसी कुछ भी बात हुई ना तो उसको बताना,
दूसरी उसी का दूसरा एक बात है
उसको बताते हाँ।
और दूसरी उसी से संबंधित बात है कि हम मनुष्य को आदत है कोई व्यक्ति से शेयर करना अपनी हर बात। अभी व्यक्ति से शेयर करने से क्या होता है, आज हमने अपना दुख इस व्यक्ति से शेयर किया, ठीक है, उसने बहुत अच्छे से सुना और कुछ विधि भी बताई हमको। अब अगली बार दुख आया तो हमको लगता है फिर से इसी के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। अभी दूसरी बार भी हमने शेयर किया, फिर से उसने विधि बताई, और फिर हमको एक आदत सी पड़ जाती है कि अपनी हर बात व्यक्तियों से शेयर करना, व्यक्तियों से को बताना, उनकी राय लेना। और धीरे धीरे जीवन में जब बड़ी परिस्थिति आ जाएगी तब भगवान से कनेक्शन पूरा ही टूट जाएगा, तो सारा ही ध्यान उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है। फिर अगर वो ना हो तो और बेचैनी बढ़ेगी फिर, क्योंकि उसी की राय चाहिए। तो वो जो है ना शेयर करना, एक है भगवान से सब शेयर करना और दूसरा है इनसे अब तक जो शेयर किया इससे मिला क्या। डिपेंडेंस, निर्बंधन नहीं कहा जा सकता है उसको, वो डिपेंडेंस है, वो अवलंबन है किसी व्यक्ति पर। तो उससे कभी भी आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती। आत्मा की उन्नति तभी होती है जब आत्मा स्टैंड्स अलोन, अकेला बस इस संसार में। व्हेन यू स्टैंड अलोन यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं हूं और वो है बस। विवेकानंद ने कहा है ना, मुझे केवल ऐसे 100 लोग चाहिए, ऐसे 100 लोग ब्रह्मचारी टू द कोर, संपूर्ण ब्रह्मचारी, और वो सामने खड़े रहकर कहे कि हमारा इस संसार में और कोई नहीं है एक परमात्मा के सिवा। इस संसार में हमारा कोई नहीं है, हमारे पास भी कुछ नहीं है। 100 सच एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड। 100 ऐसे और ये जगत का परिवर्तन हो जाएगा। केवल 100 कि जो कहे कि हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हमारा इस संसार में कोई है ही नहीं है ईश्वर के सिवा, ऐसे 100 लोग। ऐसी धारणा है कि जब when we stand alone we are the most strongest person in the world, परंतु जब हम इस पे अवलंबित उस पे अवलंबित, इसका सहारा, इसके पास आज इसके पास गए, और जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो 100 लोगों के पास जाते हैं अपनी समस्याओं का हल ढूंढने, उनको कभी भी किसी से हल नहीं मिल सकता, चाहे कोई कितना भी अच्छा हल दे दे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हल जो आता है वो इधर से आता है, अंदर से। यही सारे प्रश्नों का, अवचेतन में ही सर्व प्रश्नों का उत्तर है। इसके लिए स्टैंड अलोन, और शेयरिंग जो होगा केवल और केवल एक से करना है, एक को ही सब कुछ बताना है। हो सकता है उधर से कोई उत्तर ना आए, प्रतीक्षा करो, आएगा। द मोस्ट ब्यूटिफुल क्या कहा जाता है, एक कहावत है भगवान की सबसे बड़ी कृपा, एक जगह किसी ने लिखा है हिज अनआंसर्ड प्रेयर्स, अनुत्तरित प्रार्थनाएं जो है ना, वही एक रीति से उसकी कृपा है, क्योंकि उसकी वजह से हम लगे रहते हैं। ये तो भक्ति में कहा जाता है, परंतु उसको याद करने में और तीव्रता से याद करो, और तीव्रता से याद करो तो उत्तर आएगा। तो ये सब विधि किसकी सुनाई हमने सारी, पास्ट को भूलने की। सबसे पहला फिर से रिवाइज करो, सबसे पहला है सबसे पावरफुल विधि अशरीरीपन, एक। दूसरा विधि है श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प मन में, श्रेष्ठ संकल्प। तीसरी विधि है मुरली का चिंतन। कैसे करेंगे, एक पॉइंट उसमें से निकाल लो, टॉपिक निकाल लो, एक जगह खाली टॉपिक्स लिख लो, या छोटी सी चिट पेपर में, छोटी सी डायरी में टॉपिक्स लिख लो, और टॉपिक्स अपने जेब में रखो सारे दिन भर के लिए, कि ये टॉपिक है आज दिन भर के लिए, केवल 5 टॉपिक्स ऐसे, अभी इनका विस्तार करते जाओ। वो टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं, छोटे से, एकदम छोटा सा टॉपिक हो सकता है, पर कुछ भी हो सकता है, वो टॉपिक के बारे में सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, और अगर टाइम अगर मिल जाए तो फिर लिखो, वो दूसरी बात है। तीसरा, चौथा, लक्ष्य को निरंतर सामने रखो और लक्ष्य को याद करते रहो, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे भटकना नहीं है कहीं पर भी। यहां पर भटकाने वाले और भटकाने वाली चीजें बहुत सारी है। पांचवा, ड्रामा को याद करना, ड्रामा के सारे पॉइंट्स को गहराई से समझ कर याद करना। छठवा, सदर्शन चक्र फिराते रहना। सातवा, सर्व संबंधों से याद करना, ये भी एक कहा, प्रेम बढ़ाना, प्रेम बढ़ाना में सारे आ जाएंगे फिर, ईश्वरीय संबंध बढ़ा, सारे संबंधों से याद करना, विश्व संसार के प्रति वैराग उत्पन्न करना। कौन वैराग दिलाएगा हमें, हमें खुद ही करना पड़ेगा वो कार्य, दूसरों का दिलाया हुआ थोपा हुआ वैराग कभी काम नहीं आ सकता, हमें स्वयं ही अंदर से अपने अंदर से वो जलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आठवा, घृणा किसके प्रति, जो हो चुका, हाँ जो हो चुका वो हो चुका, अभी उसका चिंतन करके मिलेगा क्या, हो गया वो वापस आने वाला नहीं है, उसका बार बार सोचना और उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना, ये पश्चाताप करना, बाबा ने कहा ये भी टाइम वेस्ट है, हो गया हो गया, अभी क्या कर सकते, उसको बदला तो नहीं जा सकता है, खाली एक चीज कर सकते है कि वो फिर से रिपीट ना हो, हाँ उससे शिक्षा, उसको अपना टीचर समझना, परिस्थितियों को ही टीचर बना देना अपना, कि वो हमारा टीचर है, उससे मुझे, वो मुझे मेरे जीवन में क्यों आया था, क्योंकि उसके सिवा मैं सीख ही नहीं रहा था, वो होना ही था, क्योंकि बाकियों ने बहुत सिखाने की कोशिश की, ये नहीं करो ये नहीं करो ये करो, हमने सुना नहीं, इसके लिए परिस्थिति आई, उसने सिखाया, अब तो कम से कम सीखो। ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसने कोई ना कोई भूल नहीं की है ब्राह्मण बनने के बाद, असको जग माही, ऐसा कोई भी नहीं है, हर एक ने कुछ ना कुछ किया है इसके लिए। और सबसे पहले भगवान माफ करे या ना करे, धर्मराज माफ करे ना करे, स्वयं स्वयं को माफ करना। कई सारी आत्माएं ऐसी है जो खुद को ही माफ नहीं कर पाई अब तक, स्वयं के प्रति एक घृणा है, स्वयं के प्रति एक नफरत भाव है कि हमने ऐसा किया है, इसके लिए वो एक संकल्प ही रोके हुए आगे पुरुषार्थ बढ़ने को, पहले हीन भावना, इसके लिए पहला सबसे पहला स्वयं स्वयं को माफ कर दो, अब आगे बढ़ो, परंतु बहुत गहराई से माफ करना है, ऊपर ऊपर से माफ नहीं करना है, ऐसा माफ नहीं करो आज माफ किया फिर गलती की फिर कल फिर माफ किया, ऐसी माफी नहीं, गहराई से स्वयं को माफ करना। और एक विधि, नई आदत, नया संकल्प और नया चिंतन, ये तीन चीजें ले लो, नई आदत, नया संकल्प और नया चिंतन। नई आदत कहां से लाना है, एक दूसरे को देखो, कहीं ना कहीं ढूंढो, कहीं ना कहीं कोई तो है जिसमें ऐसी आदत है जो मुझ में नहीं है, इसमें वो है मुझ में नहीं है, वो आदत मुझे लानी है। आज किसका टर्न है, संतोष भाई किधर है, है क्या, नहीं वो उनका तो, हाँ हरी भाई आपके लिए, वो ये है ना आपका मुरली का रिवीजन, तो उसमें क्या करना है बताता हूँ, हर मुरली से 10 प्रश्न निकालो बस, मतलब आपको ज्यादा टेंशन नहीं है उसमें, हर मुरली से 10 खाली प्रश्न निकालो और यहाँ के सबको पूछना, ऐसे 10 थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, अच्छा समय बचता है तो केवल प्रश्न निकालो, परंतु एक छोटी सी कंडीशन है, उसके उत्तर आपको पता रहना चाहिए, ज्यादा नहीं क्योंकि नहीं तो हम आपको कुछ भी उत्तर दे देंगे इधर उधर के, हमारे पास ज्ञान बहुत है एक हफ्ते भर के, हम पूरा साल भर के कोई भी उत्तर दे देंगे, इसके लिए प्रश्न 6 प्रश्न निकालो, चलो 6, हर एक मुरली से 6 प्रश्न,
36 हो गए,
हाँ ऐसे 36 प्रश्न, हर एक मुरली से 6 प्रश्न निकालने हैं जिनके उत्तर उन्हें पता चाहिए, और वो यहाँ के प्रश्न पूछे बस, ये तो सबसे सिंपल काम है, याद कुछ ज्यादा रखना नहीं है, खाली प्रश्न निकालना है बस, तो ये एक काम करना है ये, हाँ तो कौन सी बात कर रहे थे हम, पर ये आए नहीं आज वाले संतोष भाई, चलो ठीक है 2-3 मिनट बाकी है उसमें, और एक बात और क्या हो सकता है, चिंतन, चिंतन में नहीं, नई चीजें में, ये तीन नई चीजें जीवन में धारण करनी है, और भी कुछ कर सकते हैं बुलाने के लिए, हाँ, ये बाबा ने अंतर का एक अर्थ जो है वो है डिफरेंशिएट करना, कि ये निकालना कि ये किया इससे ये नुकसान हुआ, ये भी सोचो कि अगर इसकी जगह ये करते तो इस व्यक्ति से इतनी आसक्ति अगर नहीं होती तो, ये क्रोध किया इससे ये नुकसान होगा, नहीं करते तो क्या होता, यहां भटक गए अगर नहीं भटकते तो क्या होता, कंपेयर करना, फायदा क्या हुआ नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ नुकसान क्या। बाबा ने एक मुरली में कहा है ना, निरंतर यही चिंतन करते रहो कि फायदा क्या है नुकसान क्या है, फायदा क्या है नुकसान क्या है। तो ये चिंतन भी क्या करेगा, उसको रिपीट नहीं करने देगा उसी गलती को। या फिर एक और एक लिस्ट निकालना, गलतियां कौन कौन सी की, गलत शब्द कहां कहां बोले, गलत कर्म कौन कौन से किए, गलत संकल्प कौन से किए, रॉन्ग प्लानिंग कौन कौन सी थी जीवन की। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे बिजनेसमैन निकालते हैं ना कि ये जो प्लानिंग मेरी थी ये प्लानिंग ही गलत थी, इस वजह से सारा गड़बड़ हो गया। अनुमान, और एक चीज है अनुमान लगाना, हमने अनुमान लगाया था ऐसा ऐसा होगा पर कुछ और ही हो गया, हमारा अनुमान ही गलत था। क्यों गलत था, किस बातों के प्रभाव में आ गए थे, किसके इन्फ्लुएंस में आ गए थे, कोई व्यक्ति था वो जिसके इन्फ्लुएंस में आ गए थे, जिससे प्रभावित हो गए थे, कोई परिस्थिति थी, इसके ऊपर सूक्ष्मता से सोचना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हम जो दूसरों के बारे में अनुमान लगाते हैं, यह परिस्थिति वो गलत होता है।
समय कौन सा चल
रहा है, हाँ, समय की स्मृति, ये एक और एक विधि है लास्ट, समय की स्मृति, कौन सा समय चल रहा है और हम कर क्या रहे। एक जेन मास्टर जो होता है, एक जेन मास्टर बहुत दूर पहाड़ी पर बैठकर खड़ा रहता है तो तीन लोग उसको देखते हैं। वो जेन मास्टर एक फकीर टाइप के लोग होते हैं, वो खड़ा होता है, रंजाई उसका नाम होता है। ये तीन लोग उसको देखते हैं सुबह सुबह, तो पहला सोचता है कि मुझे लगता है ये जो साधु है ये इसके मित्र खो गए हैं, उसे ढूंढ रहा है, वो पहाड़ी पर बैठा रहता है तो ये पहला सोचता है शायद इसके मित्र खो गए हैं, ये उन्हें ढूंढ रहा है। दूसरा कहता है कि मुझे नहीं लगता है वो किसी उसके मित्र खो गए और उन्हें ढूंढ रहा है, मुझे लगता है वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। तीसरा कहता है ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो प्रार्थना कर रहा है। तो दो तीनों में झगड़ा होता है, वो कहता है कि क्यों ना हम उससे ही जाके पूछे। तो उसके पास जाते हैं, उसको पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम पहला पूछता है कि तुम्हारे कोई मित्र खो गए या तुम्हारी गाय वगैरह खो गई है। वो बोलता है मेरे पास गाय ही नहीं है और मेरा दुनिया में कोई मित्र नहीं है, इसके लिए तो वो किसी को ढूंढने का खोजने का सवाल ही नहीं है। तो दूसरा कहता है देखा ना मैंने बोला ही था ना ये खोज नहीं रहा है, ये इंतजार कर रहा है किसी का। उसको पूछता है क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे कोई मित्र तो बोलते मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसका इंतजार करूं। तीसरा कहता है देखा मैंने पहले ही कहा था ये ना तो ढूंढ रहा है ना तो इंतजार कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है मैं किसी की प्रार्थना भी नहीं कर रहा हूं। वो तीन पूछते तुम कर क्या रहे थे, वो कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, आई एम डूइंग नथिंग, मैं केवल हूं, आई एम, मैं जो हूं ना उसमें स्थित होने का केवल प्रयत्न कर रहा हूं, मैं कुछ होने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल हूं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। वो पूरी जो जेन फिलोसॉफी है इसी पर आधारित है, कुछ करना ही नहीं है, कहीं बाहर जाना ही नहीं है, वो जाने की वजह से तो नुकसान हुआ है, अब बस यही स्थित रहना है कि मैं जो हूं ना बस हूं, डूइंग नथिंग। मतलब संकल्पों में भी हम करते ही रहते कुछ ना कुछ, आदत ऐसी बनी है कि कुछ ना कुछ करो, कुछ ये करो वो करो वो करो वो करो, कुछ न करना और स्व में स्थित हो जाना, मैं वो कर रहा हूं, मैं बस हूं, कुछ भी कर नहीं रहा हूं। तो वो जो संकल्प है ना, दूसरे क्या कर रहे हैं अनुमान लगाना, ये यहां पर हमारी गलती होती है। स्वयं में स्थित हो जाना ही सब कुछ सारा ज्ञान आ जाता है उसमें, बजाय इसके कि अनुमान लगाते बैठना संसार के लोगों के बारे में, ये क्या है, अच्छा कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, अच्छा इसका है उसका है, अच्छा क्या है पता नहीं, सोचते रह रहे अभी पता ही नहीं चला क्या है, परंतु अनुमान लगा रहे बहुत सारी चीजों, अच्छा दूर से देखा ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, अभी हम पहुंचे भी नहीं वहां तक और बहुत सारी 10-12 चीजें हमने सोच ली।
चिंतन करना,
चिंतन गलत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जब चिंतन जाता है तो भटकता है। इसके लिए ये सारी विधि किसकी है, पास्ट को कैसे भूलने की, अलौकिक जीवन वाले हो, नए जन्म वाले हो, तो नए जन्म में पुरानी बातें नहीं रहती। अभी आप सभी नए जन्म वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, कभी भी अपने को साधारण न समझ शक्तिशाली समझो। ये चिंतन हमने यहां नहीं छोड़ा, ये तो केवल शुरुआत है चिंतन की, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी सारे दिन भर इसी टॉपिक के ऊपर चिंतन कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक धक्का दिया है बुद्धि को। तो इस धक्के से अंधकार मिटा नहीं है, अंधकार को धक्का दिया। अंधकार केवल एक कदम पीछे सरका है, अंधकार है वहीं, केवल थोड़ा सा धक्का दिया और खुश हो रहे कि हमने अंधकार को मिटा दिया। अंधकार मिटा नहीं है, अंधकार है, खाली धक्का दिया है। वो यहाँ खड़ा था, पीछे खड़ा है थोड़ा सा एक कदम तो उसको पीछे पीछे सरका के उसको बाहर निकालना है। सरकाते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। जब जीवन में लगा प्रकाश ही प्रकाश है और सब अंधकार मिट गया, वो स्वयं ही आत्मानुभूति करेगी कि अब अंधकार मिटा नहीं। तो केवल समझो कि वो थोड़ा पीछे सरका है, बस गया नहीं है, यहाँ खड़ा था, अब यहाँ खड़ा है। जैसे विज्ञान में क्या करता है, विज्ञान ऐसे ही तो करता है। विज्ञान को पहले पता नहीं था पानी है क्या, पानी के ऊपर खोजे कि पानी पता नहीं, पानी के विषय में अज्ञान है। फिर ढूंढ लिया कि हाँ पानी मिला है, बना है H2O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब पानी का अज्ञान मिट गया, अभी अज्ञान थोड़ा दो कदम पीछे सरका, अभी H2O क्या है उसका अज्ञान खड़ा हो गया। हाइड्रोजन का अज्ञान है क्योंकि वो पता नहीं अब क्या है। फिर हाइड्रोजन को ढूंढा 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 और पता चला वो इलेक्ट्रॉन्स और एटम से बना हुआ है। अभी वो हाइड्रोजन का अज्ञान मिट गया, अभी नया अज्ञान खड़ा है, अभी वो मिट जाएगा, फिर तीसरा। ऐसा संसार में विज्ञान कितना भी कुछ करे, वो अज्ञान तो वही रहेगा, खाली पीछे पीछे सरकता है। अध्यात्म में भी कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम सोचते हैं हमने जान लिया, पर जाना नहीं है, जाना नहीं है। केवल पहले वो शब्द था, अभी दूसरे शब्द खड़े हैं, बस अज्ञान तो कायम ही है, खाली थोड़ा सा रख गया है पीछे। इसके लिए ये जो चिंतन था केवल यही नहीं रोक देना है उसको, इसको और बढ़ाना है। ऐसा भी नहीं कि हो गया अब और कौन से पॉइंट्स है, इतने तो हो गए और कितने हैं, और है सौ निकालो।